अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में 7:45, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 6 अहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकयात मच्छ और केच में पेश आए। ISPR की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया है कि दहशतगर्दों ने पीर की शब बलोचिस्तान के इलाके मच्छ में फ्रंटियर कोर की गाड़ी को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 5 अहलकार और 1 सिविलियन ड्राइवर जाँ बहक हो गए। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी का दूसरा वाकया केच के इलाके में पेश आया, जहाँ अस्करियत पसंदों और अहलकारों में फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली मारे गए। कलदम बलोच शिद्दत पसंद तंजीम यूनाइटेड बलोच आर्मी ने मच्छ में किए गए हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कबायली जिले शिमाली वजीरिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली 2 लड़कियों के वाकये में पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि असल अहम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रीजनल पुलिस अफसर ने इस वाकये की मजीद तहकीकात के लिए एक मुश्तरका टीम तश्कील दी है, जबकि पुलिस हुकाम ने तहकीकात और मजीद कार्रवाई के लिए शिमाली और जुनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा कबायली रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद उस्मान मरवंद अल मारूफ लाल शाहबाज कलंदर के सेवन में वाकई मजार पर सन 2017 में होने वाले खुदकुश हमले में मुआवनत करने का इल्जाम साबित होने पर 2 मुलजिमान को अदालत ने 70-70 बार सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। इन मुलजिमान को लोगों को जख्मी करने और धमाका खेज मवाद रखने के इल्जाम में भी अलग अलग कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। अदालत ने मुलजिमों नादिर अली जाखरानी और फुरकान अहमद को खुदकश हमलों में मुआवनत का मुजरिम करार दिया। पुलिस का कहना था कि ये दोनों मुजरिम हफीज बरोही ग्रुप से मुंसलिक थे, जो सिंध में दाइश की मुआवनत करता है। लाहौर हाईकोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चों की नाजेबा तस्वीर या वीडियोस का कारोबार करने वाले मुलजिम की जमानत की अपील खारिज कर दी है, जिसके बाद मुजरिम को अपनी सजा मुकम्मल करना होगी। मुजरिम सादत अमीन ने अपनी सजा के खिलाफ अदालत आलिया से रुजू किया था। गुज़श्ता हफ्ते चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस का जबानी फैसला सुनाने के बाद लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस फारूक हैदर ने मंगल को केस की दोबारा समाअत की। समाअत के आगाज में एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक अहमद खान ने अदालत में मौकिफ इख्तियार किया कि मुजरिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि मुजरिम सादत की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद की जाए। अदालत ने दोनों फरीकैन की दलाइल सुनने के बाद मुजरिम सादत अमीन की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालती फैसले के बाद मुजरिम सादत अमीन जेल में 7 साल की सजा पूरी करेगा। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान ने अफगानिस्तान में कयाम अमन की कोशिशों को तेज करने और बैनुल अफगान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया है। चारों मुल्कों के अफगानिस्तान से मुतालिक खुसूसी नुमाइंदों ने पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मुनक्किदा इजलास में अफगानिस्तान में जामे जंगबंदी का भी मुतालबा कर दिया। ये कॉन्फ्रेंस रूस के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान जमीर कबुलॉफ की मेजबानी में हुई। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए चीन के खुसूसी एलची लियू जॉन, पाकिस्तान के सफीर सफदर हयात और अफगानिस्तान के लिए ईरान के खुसूसी मंदूब मोहम्मद इब्राहिम ताहिरियान फर्द ने नुमाइंदगी की। रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान ने सदर गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दरमियान तय पाने वाले शराकत इख्तदार के माहदे का खैर मकदम करते हुए तवक्को जाहिर की कि इस अहम पेशरफ से बैनुल अफगान मुज़ाकरात जल्द शुरू करने में मदद मिलेगी। खित्ते के अहम ममालिक ने अफगान तनाज़े के तमाम फरीकों बशमूल तालिबान पर जोर दिया कि वो मौके से फ़ायदा उठाकर बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात के जल्द शुरू करने का माहौल बनाए। मुश्तरका बयान में अफगान हुकूमत और तालिबान की तरफ से एक दूसरे के कैदियों की रिहाई के अमल की हिमायत का भी इजहार किया गया। अमरीका के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान मुफाहमत सलम खलीलजाद अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले माहदे पर अमल दरामद के लिए एक बार फिर सरगर्म हैं। अमरीका के महकमे खारजा के बयान के मुताबिक खलीलजाद इतवार को दोहा और काबुल के लिए रवाना हुए। खबरें खत्म हुई।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آپ کے لیے آج کے پروگرام کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو کہانیاں سنوا رہے ہیں ان پاکستانیوں کی، اور ان پاکستانیوں کی جو پاکستان میں آباد ہیں اور جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں آباد ہیں، کہ وہ اس کرونا کی وبا کے دوران، لاک ڈاؤن کے دوران کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا پازیٹیو ہے، کیا ان کی فیلنگز ہیں، کیا ان کی کہانیاں ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نارتھ امریکہ میں جو پاکستانی خواتین آباد ہیں، وہ کس طرح ایسے شعبوں میں بھی کام کر رہی ہیں جن میں خواتین ذرا کم کم ہی ہوتی ہیں، اور کس طرح وہ لاک ڈاؤن کے دوران اپنی ملازمتوں کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے گھر اور اپنی ملازمت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور سنیے کہانیاں ان پاکستانی خواتین کی جو اس لاک ڈاؤن کے دوران اس کا مقابلہ ہمت سے کر رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون ہیں افشاں مبشر، جو یہاں ورجینیا میں ایک فزیو تھراپسٹ ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کے دوران وہ کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اپنی جاب کی، اپنے گھر کی، یہ ہم انہیں سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم افشاں مبشر صاحبہ۔
وعلیکم السلام۔
افشاں بے حد شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ فزیو تھراپسٹ خاتون کس طرح اس لاک ڈاؤن کے دوران کمیونٹی کی خدمت بھی کر رہی ہے اور اپنے آپ کو بھی کرونا سے بچا رہی ہے۔
جی میں ورجینیا میں کام کر رہی ہوں ایز اے فزیکل تھراپسٹ، اور کمیونٹی ورک کرتی ہوں، لائک میں پیشنٹ کو گھر جا کے ان کو باقاعدہ دیکھتی ہوں، اور کچھ پیشنٹ کو میں ٹیلی ہیلتھ بھی کرتی ہوں۔ ٹیلی ہیلتھ ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ویڈیو کانفرنس کال کرتے ہیں اور آپ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیسے لاک ڈاؤن میں اپنی ایکسرسائز برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میں پھر بھی اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے میرے پاس 6 سال کی بچی ہے، جو جس کا آج کل اسکول بھی بند ہے اور ڈے کیئر بھی نہیں ہے، تو اس مشکلات کا مجھے سامنا ہوتا ہے، اور میرے ہسبینڈ بھی کام کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس طرح کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ جب وہ گھر پہ ہوتے ہیں تو میں اپنا اسکیڈول اکارڈنگ ٹو ان کے مطابق رکھتی ہوں، تو پیشنٹس کو اسکیڈول خود دیتی ہوں۔ تو جب وہ گھر پہ ہوتے ہیں تو میں کام پہ جاتی ہوں، جب وہ کام پہ ہوتے ہیں تو میں گھر پہ رہتی ہوں، اور تھرو ٹیلی ہیلتھ اپنے پیشنٹ۔
کمی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت آپ ان پیشنٹس کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی، جو کہ نرسنگ ہوم میں ہیں، بوڑھے ہیں، تو کس طرح پھر آپ اپنے حفاظتی انتظامات کرتی ہیں، کتنے پیشنٹس کے پاس آپ ایک دن میں جاتی ہیں یا ویڈیو کال کرتی ہیں؟
اچھا، تو میں آج کل کمیونٹی ورک کر رہی ہوں، نرسنگ ہوم میں بھی جاتی تھی، لیکن نرسنگ ہوم میں میں ہوتی ہوں ایز اے پی آر، اینڈ اف دے نیڈ اٹ دے کال می۔ تو ابھی میں کمیونٹی ورک کر رہی ہوں لائک ہوم ہیلتھ، اور اس میں میں پیشنٹ کو ایک دن میں 5 سے 6 پیشنٹ دیکھ لیتی ہوں، اور میں پیشنٹ کے گھر جاتی ہوں۔ اس میں میں اسپیشل اپنا جو ہے ہمارے جو ڈریس ہوتا ہے وہ پورا، جیسے ماسک ہے، گلوز ہے، گاؤن ہے، ڈسپوزیبل شوز ہے، ہیڈ ہے، فیس کور ہے، وہ سب کچھ کر کے میں پیشنٹ کے گھر جاتی ہوں، اور پھر باقاعدہ ہمارے پاس ہمارے ایک اسپیشل بیگ ہوتا ہے جس میں 3 پورشن ہوتے ہیں۔ ایک پورشن میں ہم نے جو ہے وہ ڈرٹی کلوتھ رکھنے ہوتے ہیں، ایک میں صاف، ایک میں ڈس انفیکشن چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں پیشنٹ کے پاس جاتی ہوں۔ جیسے میں ان کے وائٹلز لیتی ہوں، ان کو پہلے ایکسرسائز کرنے سے پہلے ان کو چیک کرتی ہوں کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے، ٹیمپریچر۔ پہلے تو جانے سے پہلے پیشنٹ کو میں کال کرتی ہوں، ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کو کسی قسم کے ایسے سائن تو نہیں ہے، جیسے کوئی کھول ہے، کوئی کھانسی ہے، کوئی بخار ہے، جیسے کرونا کے کوئی ایسے سائن تو نہیں ہے۔ پھر اگر وہ کلیئر کرتے ہیں تو میں ان کے گھر جاتی ہوں، پھر چیک کرتی ہوں ٹیمپریچر، ان کا بلڈ پریشر بفور ایکسرسائز، اور پھر اس کے بعد جو ہے پیشنٹ کو میں एजुकेट करती हूँ कि कैसे उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बता के आती हूँ उनको, के ट्रेनिंग बाकायदा सीखने से पेशेंट है। आजकल बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेरे अभी नी रिप्लेसमेंट है, उनके लिए बहुत तकलीफ में है, दर्द में है, उनको उनके लिए बहुत मुश्किल है चलना खड़ा होना, तो उनको ये सब बातें मैं उनको बता के आती हूँ। क्योंकि ज्यादातर होम हेल्थ जो है हम पेशेंट को हफ्ते में एक या दो दफा देखते हैं, उसके बाद जब मैं आती हूँ तो अपने सारे जो मैंने डिस्पोजिबल क्लोथ पहने होते हैं वो सारे मैं अपने डर्टी पोर्शन में, बैग के डर्टी पोर्शन में डालती हूँ, और उसके बाद पूरे अपने इक्विपमेंट्स होते हैं उसे डिसइंफेक्शन करती हूँ, अपने आप को पूरा सैनिटाइजर हैंड वॉश बहुत ज्यादा क्विकली हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइजर यूज करती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं दूसरे पेशेंट पर जाती हूँ तो फिर अगेन मैं यही प्रोसीजर करती हूँ। और फिर घर आने के बाद मैं सबसे पहले अपने घर में आने के बाद मैं गैराज में सबसे पहले अपने कपड़े तब्दील करती हूँ और कपड़े बैग में डालती हूँ और फिर उसे वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ और फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्ची की तरफ आती हूँ।
तो बच्ची भी आजकल परेशान है क्योंकि हर वक्त माँ जो है वो बिजी है और दूर रहती है ना जब आप आती हैं तो।
हाँ, इसलिए हम उसमें से ज्यादा थोड़ा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उससे मैं ज्यादा प्यार नहीं करती, हग नहीं करती, अलग से लाती हूँ, और थोड़ा सा वो होती है, लेकिन अब माशाल्लाह 6 साल की है तो थोड़ा समझ रही है कि क्या है। फिर उसे एक्सप्लेन करती हूँ कि बेटा ये आजकल वायरस है इसलिए मैं आपको ज्यादा प्यार नहीं कर सकती, आप मेरे पास नहीं आओ, दूर बैठो, और फिर वो भी परेशान हो जाती है क्योंकि आजकल स्कूल नहीं है, डे केयर नहीं है, घर में रहती है, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो थोड़ा सा मैनेज है, मुश्किल है, लेकिन मैनेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये साबित हो रहा है कि जो पाकिस्तानी ख्वातीन हैं वो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं मैनेज कर रही हैं कोरोना को।
जी, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, कोरोना को फेस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हालात ठीक करे, दोबारा नॉर्मल आए हम तो, लेकिन ये कि हम लोग जैसे फ्रंट फ्रंट लाइन वर्कर, एज ए फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं।
अच्छा, आपने बताया कि आप नर्सिंग होम से भी वाबस्ता हैं, गो कि आजकल आप टेली काम कर रही हैं, ऑनलाइन कर रही हैं नर्सिंग होम्स का, तो कुछ बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त नर्सिंग होम्स के बारे में? कुछ अच्छी खबरें नहीं मिल रही अमेरिका में, कुछ जिक्र कीजिए कि क्या हाल है नर्सिंग होम्स का और किस तरह
हाँ
वो
जी
बूढ़े
जी
लोग रह रहे हैं।
जी नर्सिंग होम टेली हेल्थ नहीं होता, ये होम हेल्थ और क्लिनिक्स टेली हेल्थ हो रहे हैं। नर्सिंग होम में ज्यादातर रेजिडेंट्स वहीं पे रहते हैं और वहां पे बाकायदा एक रिहैब डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे पेशेंट को लाया जाता है और पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, लेकिन आजकल क्योंकि कोरोना की वजह से पेशेंट को भी आइसोलेट किया जाता है, सब पेशेंट को अलग अलग रूम में ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कि अगर पेशेंट स्पेशली अगर पेशेंट जो है कोरोना से अफेक्टेड है तो उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है, अलग आइसोलेशन कर दी जाती है उसकी, और इसी तरह जो स्टाफ है या फिजियोथेरेपिस्ट है वो पूरा अपना ड्रेसअप होके उसके पास जाता है और उसे ट्रीट करता है, और उसके बाद आने के बाद पूरा अनड्रेस होता है दोबारा से, और फिर उसके बाद ईच एंड एवरी थिंग डिसइंफेक्शन करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, और मैं इतना फ्रिक्वेंटली नर्सिंग होम में तो नहीं जा रही आजकल, लेकिन मेरे बहुत से कोलीग्स और साथी हैं जो जा रहे हैं और जो मुझे बता रहे हैं कि क्या नाम जो है मुश्किल का सामना है, लेकिन वो कर रहे हैं, और
तो
मैं बहुत
सुना
सी
है कि कुछ
पर्सनली
कुछ लोग जो हेल्थ का अमला है वो भी कोरोना ने उन पर भी हमला कर दिया नर्सिंग होम के जो अमला था।
जी, मैं काफी पर्सनली लोग जानती हूँ जिन पे कोरोना का अफेक्टेड है और जो माशाल्लाह सेहत याब होके वापस भी आ गए हैं और कुछ नहीं आ सके हैं।
बहुत सी अमवात नर्सिंग होम्स में भी हुई, तो उसकी क्या वजूहात थी? सुनने में यही आया कि बहुत बूढ़े लोग मर।
नर्सिंग होम में अब देखिए, नर्सिंग होम में पेशेंट जो होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं बेड बाउंड होते हैं, जैसे जो रेजिडेंट्स हैं ज्यादातर बेड बाउंड है, उनका वैसे ही लंग्स बहुत, यानी उनको और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, एक नई है प्रॉब्लम उनको, जैसे कोई डायबिटिक है, कोई उनको पहले से नमोनिया हो गया है, उनको फिर वायरस बहुत जल्दी इफेक्ट कर देता है, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसलिए ज्यादा जो है अफेक्टेड हो रहे हैं, इससे कि वो बहुत एजेड लोग, एजेड भी हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े भी हैं, ज़ाहिर है पेशेंट जो है वो 80 प्लस हैं, तो वो एज भी है उनकी और वो बहुत अफेक्टेड होते हैं, और इसमें वायरस में भी काफी टाइप्स हैं, तो वो जो बूढ़ों को जिनको ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है, बहुत सीवियर हो जाता है।
लेकिन कहीं ऐसा तो कहीं ये भी सुनने में आया कि उनको अमला ही वहां से भाग गया, अमले ने ही काम छोड़ दिया इस डर के मारे कि कहीं वो अफेक्टेड ना हो जाएं। कुछ ऐसे वाकयात भी आपके मुशाहिदे में आए या आपके इल्म में हैं?
नहीं, मैं जिन नर्सिंग होम को जानती हूँ उनमें तो ऐसे नहीं है। आपको मैंने अभी बताया कि मैं खुद तो इतनी फ्रीक्वेंटली जा नहीं रही हूँ, लेकिन जिनको जिन से मेरी बात होती है, जो मेरे कोलीग्स हैं, साथी हैं, तो उनसे मेरी बात होती है, वो मुझे बताते हैं कि क्या नाम, ऐसी ऐसे जिन पे वो जा रहे हैं उनमें ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन ओवरऑल अमेरिका में सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानती।
तो आपको ये मालूम है कि जिन नर्सिंग होम्स से आपका ताल्लुक है उनमें बिल्कुल सही सही इलाज भी हो रहा है, और लेकिन अमवात की तादाद जाहिर है इसलिए भी ज़्यादा है कि वो पहले से ही मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हैं और वो सरवाइव नहीं कर पा रहे अगर उनको कोरोना उन पर हमला कर दे। तो आम तासुर यही है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो मसाज करता है, तो क्या
नहीं,
फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी किस्में हैं, ये क्या किन मराहिल से फिजियोथेरेपी होती है, ये हमारे सुनने वालों को बताइए।
फिजियोथेरेपी जी एक एक बहुत बड़ी, आप ये कह सकते हैं कि एक स्पेशल फील्ड है, और उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट आते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे वर्क करता है, आप नर्सिंग होम में भी करता है, एज ए वर्क करता है, होम हेल्थ फिजिकल थेरेपी भी करता है, क्लिनिक फिजिकल थेरेपी भी करता है, उसमें आपकी कंसल्टेशन भी होती है, उसमें आप पेशेंट को ये बताते हैं कि वो कैसे अपनी असल जिंदगी में वापस आएगा। अब एक पेशेंट है, उसे स्ट्रोक हो गया है, तो उसको अब उसका एक साइड पैरालाइज हो गया या वीकनेस हो गई है, तो हम उनको बताते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें कि वो अपना स्ट्रेंथ वापस आए उसकी, और कैसे वो अपनी मोबिलिटी उसकी जो है रिटर्न हो। जैसे अब है वो एक आम पेशेंट है, वो खड़ा नहीं हो सकता है जब स्ट्रोक का, तो कैसे खड़ा होगा और कैसे चलेगा। जैसे आप उसे उसे आप उसे टेक्निक्स बताते हैं स्पेशल, जिससे वो दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आए। और ऐसे ही बहुत से पेशेंट होते हैं जो जिनको बहुत से ऐसे ऑर्थराइटिस है, उन्हें हम डिफरेंट मोडेलिटीज के थ्रू उनको हम ट्रीट करते हैं। और इसी तरह इसमें डिफरेंट फील्ड है फिजियोथेरेपी में, आप इसमें स्पेशल बच्चों के साथ भी काम करते हैं, बच्चों के साथ भी, आप इसी तरह बूढ़ों के साथ, और मैं जो स्पेशली वर्जीनिया में काम कर रही हूँ वो मैं बूढ़े लोगों के साथ कर रही हूँ। तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं यहाँ पे अमेरिका में, जो नर्सिंग होम में भी होते हैं, और जो होम हेल्थ है वो भी करती हूँ, क्लिनिक है, तो आप इसमें डिफरेंट कैटेगरी के पेशेंट आप डील करते हैं। फिजियोथेरेपी में जो है आप आर्थराइटिस के पेशेंट भी आते हैं, आपको स्ट्रोक के पेशेंट भी आते हैं, आप मेरे पास मेजोरिटी जो है वो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की आती है, जैसे आप नी रिप्लेसमेंट हुआ, हिप रिप्लेसमेंट हुआ, तो उसमें हम उनको बताते हैं कि वो क्या नाम, आप बिफोर सर्जरी भी कि कैसे वो अपनी स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन बरकरार रखेगा, और आफ्टर सर्जरी भी वो कैसे अपनी रेंज ऑफ मोशन दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ कैसे आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिजियोथेरेपी में डॉक्टरेट कर रही हूँ और मेरा आखिरी सेमेस्टर है, तो फिजियोथेरेपी और मसाज थेरेपी इज टोटली डिफरेंट। लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो फिजियोथेरेपी मसाज करते हैं, वो मसाज बिल्कुल भी नहीं करते, वो लोगों को फंक्शनल वर्क करते हैं।
तो फिर मसाज कौन करता है फिजियोथेरेपी में?
मसाज थेरेपिस्ट
वो यानी,
वो डिफरेंट वर्क,
लेकिन वो
वो
इसी शॉप से?
फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते, वो मसाज थेरेपिस्ट डिफरेंट होते हैं। उनको आप बहुत सी टेक्निक्स हैं, जैसे आपको मैनुअल, आप मैनुअल वो मसाज नहीं होता, आप मैनुअल थेरेपी कह सकते हैं, मैनुअल थेरेपी है, उसमें आप मोबिलाइजेशन है, उनमें बहुत से पेशेंट हैं जो कोशिश हम ये इनकरेज करते हैं कि पेशेंट एक्टिवली खुद करे एक्सरसाइज भी, अगर जो पेशेंट है जो पैरालाइज है तो उनको पैसिवली पहले थोड़ा सा एजुकेट करते हैं कि कैसे आपने पैसिवली करना है, फिर एक्टिव आपको उसके साथ थोड़ी हेल्प करके करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है पेशेंट एक्टिवली खुद करे ना, तो मैनुअल, आप उसे मैनुअल थेरेपी कह सकते हैं।
यानी एक्सरसाइज पर जोर होता है ज्यादातर, एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज, फंक्शनल गेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, और आपको ज्यादातर आप हाउ टू यानी पेशेंट कैसे वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में आएगा, फंक्शनल, जैसे कैसे वो बिस्तर पे जाएगा. बहुत से पेशेंट होते हैं जो बीमार होते हैं, वो इवन बेड मोबिलिटी भी नहीं होती उनकी, वो टर्न नहीं कर सकते, वो बैठ नहीं सकते, वो उठ नहीं सकते. तो उनको ये सारा बेसिक, जैसे बच्चों को लर्निंग करते हैं वैसे उनको बेसिकली लर्निंग करवाते हैं कि कैसे वो ऐसे डिफरेंट फेजेस में वो लर्न करे कि कैसे उसने ट्रांसफर होना है, कैसे उसने चलना है, कैसे उसने बैठना है. इसी तरह बहुत से पेशेंट आर्थराइटिस के होते हैं, दर्द होते हैं तो पेन के आते हैं, तो हम थ्रू मोबिलाइजेशन और थ्रू मैनुअल थेरेपी और थ्रू मोडेलिटीज, बहुत सी पेन की मोडेलिटीज है, उनके थ्रू उनकी हेल्प करते हैं कि कैसे उनका पेन जो है दर्द दूर होगा. और उनको एजुकेट करते हैं, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताते हैं, तो उसके थ्रू वो घर में खुद जो है कैसे अपने आप को बेहतर पोस्चर, कैसे पोस्चर. बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका पोस्चर बहुत रॉन्ग होता है, तो थ्रू प्रॉपर पोस्चर के थ्रू, प्रॉपर एक्सरसाइज के थ्रू, तो उनको बताते हैं, एजुकेट करते हैं कि हाउ दे विल रिटर्न टू द नॉर्मल लाइफ, और कैसे उनका दर्द दूर होगा, कैसे वो आर्थराइटिस को मेंटेन रख सकेंगे, कैसे वो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखेंगे, कैसे वो अपना फंक्शन लेवल मेंटेन रखेंगे.
शुक्रिया आपका अफशा मुबशिर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वर्जीनिया में आप अपने जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, लॉकडाउन के दौरान अपने घर और अपनी जॉब दोनों को साथ साथ लेकर चल रही हैं और बड़ी हिम्मत से मुकाबला कर रही हैं, अपने आप को बचा रही हैं और अपने बच्चों को बचा रही हैं, अपनी बच्ची को बचा रही हैं और अपने जहाँ जहाँ जा रही हैं उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा रही हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को जैसे कि उनका सिलसिला चल रहा था वो चलता रहे. बहुत शुक्रिया, थैंक यू.
बहुत शुक्रिया,
थैंक यू.
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdubhoa.com पर. जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdubhoa.com पर आइए. दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urdubhoa.com पर. अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है. इस पते को याद रखिए, www.urdubhoa.com.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खसूसी शो के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान वर्कर्स थी, जो ख़वातीन कारकुन थी, वो भी अपना काम जारी रखे हुए हैं और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर के अलावा फील्ड में भी जा रही हैं और अपनी जिम्मेदारियों को इस कोरोना के बहरान के दौरान भी हत्तुलमका कोशिश कर रही हैं कि अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये जिम्मेदारियां किसी न किसी अंदाज में अदा करती रहें. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टोरंटो कैनेडा से, बल्कि मिसिसागा से, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इनका नाम है सदफ अदनान, और ये आजकल अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रही हैं इनसे पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम सदफ अदनान साहिबा.
जी वालेकुम अस्सलाम यास्मीन.
बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का. आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, इससे पेशतर कि हम पूछें कि ये आप कैसे काम कर रही हैं इस लॉकडाउन के दौरान, हमें ये बताइए कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो क्या काम करता है.
जी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है कम्युनिटी में. इनफैक्ट अगर ये फील्ड ना हो तो काफी मुश्किलें आ सकती हैं पेशेंट की जिंदगी में. एक्चुअली हमारा काम यह होता है कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट करना उसकी डिसेबिलिटी के साथ, जो भी उसके साथ मिसहैप हुआ है, जो भी उसकी डायग्नोसिस है या उसकी डिजीज है, उस डिजीज के साथ वो कैसे अपनी लाइफ को जारी रख सकता है. हमारा ये काम होता है कि हम उसको किस तरह अपनी प्रॉब्लम के साथ, जो उसके साथ चल रही है, उसको जिंदगी में बेहतर कर सके. तो इस वक्त हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है कोविड 19 के बेस के पर. कम्युनिटी में जो पेशेंट्स घर पे हैं या ऑन रिस्क है गिरने के ऊपर, फॉल प्रिवेंशन या और कोई भी किस्म की उनको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइजेशन उनकी हो सकती है, हमें किस तरह उनकी हॉस्पिटलाइजेशन को रोकना है, कौन से ऐसे डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं जिनको हमें उनके लिए उनको असिस्ट करके उनको घर पे ही रखने के लिए हद्दुल इम्कान कोशिश करनी پڑتی ہے کہ کس طرح سے ہم ان کو ان کا ٹرپ بچائیں ہاسپٹل کا. تو ہم گھر پہ جاتے ہیں, ان کی ہوم سیفٹی اسیسمنٹ کرتے ہیں, ان کے سارے طریقے کار دیکھتے ہیں, جس طرح وہ اپنی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, جس میں ان کی واکنگ, ان کی ٹوائلٹنگ, ان کا شاور, ان کی ایٹنگ, ڈریسنگ, جتنی بھی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں, اور اگر اس میں کوئی مشکل آ رہی ہے جس میں چانسز ہیں کہ وہ گر بھی سکتے ہیں, جس میں چانسز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہرٹ کر سکتے ہیں, تو ہم ان انوائرمنٹل کنڈیشن سے ان کو بچاتے ہیں اور ان کو سجیشنس دیتے ہیں کہ یہ یہ طریقہ آپ کو اپنانا ہے, اس طرح گھر میں آپ کو ماڈیفیکیشن ہلکی سی کرنی ہے, اس طرح آپ کو یہ اکوپمنٹ اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے جو آپ کی ہیلپ کرے گا کہ آپ اپنی ڈیلی لائف کو جو ہے وہ کافی حد تک نارمل رکھ سکتے ہیں اس بیماری کے ساتھ. اور یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو گھر میں ہی آلریڈی ہیں, اور جو لوگ ہاسپٹل سے آ رہے ہیں جن میں کووڈ پیشنٹس بھی ہیں, ان کی بھی جا کے ہم گھر پہ اسسمنٹ کرتے ہیں, تاکہ کیونکہ وہ ہاسپٹل سے جب ڈسچارج ہوتے ہیں دے آر آلریڈی ویری ویک, ویری لیتھارجک. ابھی میں نے دو دن پہلے ہی ایک کووڈ کا پیشنٹ دیکھا ہے جس کو نمونیا ہوا ہوا تھا, اینڈ ہی کڈنٹ ایون واک, ہی کڈنٹ ایون اسٹینڈ, بہت زیادہ ویک تھا, آکسیجن کے اوپر تھا, تو اس کی وائف کو بہت پرابلم ہو رہی تھی کہ اس کی کس طرح سے اس کو ہیلپ کرے, کس طرح سے اس کو باتھ روم لے کے جائے, کس طرح سے اس کو بیڈ تک لے کر آئے. وہ مستقل ایک ہی پوزیشن میں ایک کاؤچ پہ بیٹھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے اس کو اسکن بریک ڈاؤن ایشوز بھی رسک پہ آ رہے تھے. تو اس وہاں جا کے میں نے اس کی پوری اسیسمنٹ کی, ان کی پوری طرح سے ہسٹری لے کر ان کو بتایا کہ وہ کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کی ٹیک کیئر کر سکتی ہیں, کون کون سے ایسے اکوپمنٹ ہیں جو اپنی لائف میں لے کے آ سکتی ہیں, تاکہ ان کی جو دیکھ بھال ہو وہ پراپرلی ہو. جس میں ہم نے ان کو ایک ویل چیئر, سب سے پہلے تو ایک ویل چیئر ان کی میجرمنٹ لے کے ان کو بتایا کہ یہ ویل چیئر آپ لے لیں, کیونکہ وہ چل نہیں سکتے تھے, ان کو اٹھا کے باتھ روم تک لے کے جانا بہت مشکل ہو رہا تھا. اس کے بعد ان کی ٹوائلٹنگ اسکلس ہم نے اسیس کی, میں نے اسیس کی, اور اس کے بعد ان کو ٹوائلٹنگ کا طریقہ کار بتایا کہ کس طرح سے سیفلی وہ ٹوائلٹنگ ان کو کروا سکتی ہیں, اسپنج باتھ دلا سکتی ہیں, بیڈ کے اوپر پوزیشننگ کیسے دلوا سکتی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی سیفٹی اور ہماری اپنی سیفٹی کا بھی دھیان رکھا. ہمارے پاس ہماری جس کمپنی پہ ہم جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہماری ہیلپ فل زندگی کر رہی ہے, ہماری اس پروفیشن کو کنٹینیو رکھنے میں ہماری اس کمپنی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہماری ایوری ڈے کے بیسس کے اوپر وہ ہمیں اپڈیٹس دے رہے ہیں, ہماری پی پی ای کٹس ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں, ہماری ورچوئل وزٹس کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جہاں ہم نہیں جا سکتے, جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ رسک کی جگہ ہے, یا پوری فیملی کو ہوا ہوا ہے, یا پوری فیملی اسمپٹومیٹک ہے, تو وہاں ہم ورچوئل کالس کرتے ہیں, ویڈیو کالس کرتے ہیں, اور ان کو جتنا بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں وہ ہم ان کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں, اور
تو یہ
طریقے سے بالکل جی.
لیکن پھر آپ کا اپنا گھر, اب کیونکہ اب سارے آپ کے بچے ہیں, آپ کے شوہر ہیں
جی,
تو جو کتنے بچے ہیں آپ کے؟
جی میرے تین بچے ہیں, میرے شوہر آئی ٹی کا کام کرتے ہیں, تو وہ کافی دفعہ گھر سے کر رہے ہوتے ہیں, کافی دفعہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے, انفیکٹ کبھی ان کو رات میں بھی جانا پڑتا ہے کیونکہ آئی ٹی کی پرابلم ہو جاتی ہے, کبھی رات میں بھی تو نکالنا پڑتا ہے ہر چیز اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو بس ایک چیلنجنگ لائف ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمت دیتا رہے گا ان شاء اللہ. کمیونٹی کی بھی ہیلپ کرنی ہے, اور اپنے گھر کو بھی چلانا ہے, اور سیفٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے, تو ان سب کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے لائف بہت زیادہ اسٹرگلنگ اور چیلنجنگ ہو گئی ہے.
ایک دن میں کتنے لوگوں کو آپ وزٹ کرتی ہیں اس وقت آج کل؟
جی آج کل ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ایمرجنسی ہے, کتنی پرائیورٹی بیس پہ ہے. اگر بہت زیادہ ارجنٹلی نیڈ نہیں ہوتی تو ہم اس کا ورچوئل ٹور کر لیتے ہیں, یا جس کا مطلب ہے فون پہ یا ویڈیو کال, اور اگر ان پرسن ہی جانا لازمی ہوتا ہے تو پھر ہم وزٹ کرتے ہیں. تو آلموسٹ 4 to 5 میکسیمم پیشنٹس میں کور کر لیتی ہوں ایک دن میں, اور اس کے بعد گھر میں آنے کا ایک الگ پروسیجر ہوتا ہے, وہ بھی ایک پورا तरीके का से गुजरना पड़ता है, जिसमें हमें घर आते ही हम सीधा, मैं मतलब घर के अंदर नहीं आती, मैं अपने गैराज से एंटर करती हूँ, अपने लॉन्ड्री रूम में ही मैंने अपनी चीजें जो रखी हुई होती है मुझे राइट अवे चेंज करनी होती है, वो मैं चेंज करके उसके बाद मैं अपने हाथ धो के बाथरूम से, वही मेरा साथ में बाथरूम है, उसके बाद फिर मैं सीधी ऊपर जाती हूँ, शावर लेती हूँ, शावर लेने के बाद फिर मैं नीचे आती हूँ और वापस बच्चों से बातचीत करती हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई भी ऐसा कोविड पेशेंट उस दिन विजिट किया हुआ होता तो मैं एटलीस्ट 3 दिन तक तो बच्चों के घर ही नहीं आती। तो बच्चे बेचारे सफर कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली उनकी भी सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, स्कूल की और दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज जो भी उनकी होती थी। आई फील वेरी एक्चुअली बैड फॉर द किड्स स्पेशली, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। सबसे पहले तो वो अपने स्कूल की, अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म करके बैठे हुए, उसके बाद उनकी घर की लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई हुई है। स्पेशली मुझ जैसी फैमिली जिसका हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। अल्लाह ताला बस उनको हिम्मत दे, उन सारे बच्चों को और हमें भी हिम्मत दे कि हम इस हालात से सही मुकाबला कर सकें। बच्चों को समझदारी से मैं हर रोज उनको समझाती हूँ, बिठा के उनके करीब नहीं जाती। अगर मैं कोविड का पेशेंट देख लेती हूँ तो एटलीस्ट मैं 3 से 5 दिन का एक डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंस अपने बच्चों के साथ भी रखती हूँ, जो कि बड़ा ही मुश्किल होता है। मेरा छोटा बेटा 7 साल का है और वो बहुत मुझसे अटैच भी है,
तो बस क्या करें। तो कितने पेशेंट्स आमतौर पर आपको आजकल कोविड के मिल रहे होते हैं?
देखिए कोविड के तो बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि कोविड के पेशेंट्स ज्यादातर हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन जो घर पे आना चाह रहे हैं तो उनको हॉस्पिटल रिलीज कर देता है। तो उसमें हम उसमें उसके बाद भी हम स्क्रीनिंग करते हैं। अगर कोविड के पेशेंट को इतनी अर्जेंट नीड नहीं है तो हम फोन पे ही वर्चुअल टूर कर लेते हैं, और अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि घर आके उसकी पूरी कंडीशन का असेसमेंट करें और उसकी घर की भी कंडीशन देखें, उसके बाद सजेशन दें, तो हम जाते हैं। तो इस लिहाज से कोविड के पेशेंट्स तकरीबन अगर आप कह लें कि मैं 2 हफ्ते में एक ही होता है, लेकिन जो आइसोलेशन का पीरियड चल रहा होता है, यानी कि जो पेशेंट्स उस वार्ड से निकल के आए जिसमें कोविड के पेशेंट्स थे, वो काफी होते हैं। क्योंकि वो खुद तो नहीं होते कोविड पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि वो ऑन रिस्क होते हैं, क्योंकि वो उसी वार्ड से डिस्चार्ज हुए हुए होते हैं जहाँ पे आउटब्रेक हुआ हुआ होता है, तो वो पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो उनके साथ हमें एवरी डे का ही ऑलमोस्ट इंटरेक्शन होता है कि जिनकी आइसोलेशन चल रही होती है, 14 डेज का क्वारंटीन चल रहा होता है, वो उनके अपनी फैमिली के लिए चल रहा होता है, विजिटर्स के लिए चल रहा होता है, लेकिन हमें जाना होता है, जिसमें हम रिटायरमेंट होम्स भी जाते हैं। आई डोंट विजिट नर्सिंग होम, लेकिन मैं रिटायरमेंट होम्स जाती हूँ जिनमें बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो कंप्लीट आइसोलेशन में होते हैं, जिनमें सिर्फ नर्सेज और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही होती है।
अच्छा, तो थेरेपी का काम तो जाहिर है कि वो तो टच लाजमी चीज है, तो फिर आप उनको उनकी मालिश वगैरह, जो मसाज वगैरह, वो आप करती हैं इस दौरान?
नहीं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम मसाज या मालिश में नहीं आता, वो फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड में आ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम उनका, जैसे मैंने बताया, उनका उनकी वॉकिंग स्किल्स देखना, उनकी ट्रांसफर स्किल्स देखना, जिसमें उनको बाज दफा पकड़ना भी पड़ता है क्योंकि वो बहुत वीक हो रहे होते हैं, तो उनको सही तरह गाइडेंस देनी होती है कि किस तरह चलना है वॉकर को पकड़ के, किस तरह बिस्तर से उतरना है, किस तरह टॉयलेट से उतरना है या चढ़ना है, आई मीन टॉयलेट पे बैठना है या उठना है। तो इस लिहाज से हमारे पास पूरी पीपीई किट होती है, हमने ग्लव्स पहने हुए होते हैं, हमारे मास्क होते हैं, हमारी शील्ड्स होती हैं, प्लास्टिक शील्ड्स होती हैं, और जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनके साथ तो हमारी और भी पीपीई फुल कंप्लीट किट होती है, जिसमें हमारे गाउन्स होते हैं, बूटीज होती हैं, कवर किया हुआ होता है हमने अपने बूट्स को भी, और राइट अवे जैसे ही हम उस जगह से निकलते हैं वो पूरा हम पीपीई उतार के एक बैग में डाल के राइट अवे हमें गार्बेज कर देना होता है गाड़ी में बैठने से पहले, उसके बाद गाड़ी डिसइंफेक्ट करनी होती है। तो इट्स अ होल प्रोसीजर, बहुत ज्यादा लंबा टाइम हमें एक पेशेंट पे देना पड़ रहा है, क्योंकि जाने से पहले पहले तैयारी करनी होती है, फिर वापस आने के बाद तैयारी करनी होती है, गाड़ी में बैठने से पहले, गाड़ी में बैठने के बाद अपना सेल फोन, अपनी की चेन, अपना गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं, स्टेयरिंग गियर, विंडो, इन सबको पूरा डिसइंफेक्ट करके, और उसका भी एक अलग बैग बनाया हुआ होता है कि जितने भी डिसइंफेक्टेंट वाइप्स होते हैं वो मैं एक बैग में डाल के उसको उसको नॉट लगाती जा रही होती है, और घर आने से पहले उसको हम गार्बेज करते हैं। इस तरीके से चल रहा है सिलसिला। डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है बस, लेकिन अल्लाह की मदद है और बाकी आपकी अपनी हिम्मत जो इस सिलसिले को जारी रखे हुए है।
बहुत शुक्रिया सदा फतनाम साहिबा, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं कनाडा के शहर मिसिसागा में। आपने बड़ी तफसील से हमारे सुनने वालों को बताया कि किस तरह पाकिस्तानी ख्वातीन जो कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं अपनी जिम्मेदारियों को इस लॉकडाउन के दौरान भी किस तरह निभा रही हैं और किस तरह अपने घर की ज़िंदगी को भी साथ साथ बरकरार रखे हुए हैं और बड़ी परेशानियों के साथ अपनी घरेलू उलझनों के साथ भी अपने जॉब को नहीं छोड़ रही और अपना रोज़गार मुसलसल उन्होंने बरकरार रखा हुआ है।
बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू, थैंक
थैंक यू आपका बहुत थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आप सुन रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सिविल इंजीनियर खातून से जो लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में तने तनहा वाशिंगटन DC में अपनी कंस्ट्रक्शन की जॉब पर काम कर रही हैं। देखते हैं कि वो किस अंदाज में और किस तरीके से अपने इस जॉब को निभा रही हैं और किस तरह इतनी दूर अपने घर वालों से रहकर वो अपने आप को महफूज भी रखे हुए हैं और बाहर निकलकर कंस्ट्रक्शन के कामों की निगरानी भी कर रही हैं या खुद कर रही हैं, उनसे पूछते हैं। इनका नाम है अरीबा सुमरो, तो हमारे साथ टेलीफोन पर इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीबा सुमरो साहिबा।
जी वालेकुम अस्सलाम,
कैसी हैं अरीबा?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं?
मैं तो सुनाने के लिए आपको सुनाने के लिए दावत दी है कि आप सुनाएं कि आपका क्या हाल है।
बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
तो कुछ बताइए कि क्या आपकी इस वक्त जॉब है जो जो आप घर घर की बजाय, आपका घर गालिबन वाशिंगटन सियाटल में है और आप वाशिंगटन DC में हैं और अकेली रहती हैं यहाँ पर जॉब के वजह से?
जो जिस कंपनी में हूँ उनके पास ये प्रोजेक्ट था प्रोटो लाइन मेट्रो रेल, तो ये जॉब यहाँ पे मैरिलैंड में है, तो इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे काम करना एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। एंड उसके लिए तो ये जॉब 16 माइल्स ऑफ लाइट रेल कंस्ट्रक्शन है जो न्यू कैरलटन मैरिलैंड से जाती है टू हायट्सविल टू बेथेस्डा टू न्यू कैरलटन। एंड तो ये 16 माइल्स ऑफ जॉब के लिए है काफी डिफरेंट सेगमेंट। मेरा सेगमेंट सिल्वर स्प्रिंग मैरिलैंड में है जिसमें दो ब्रिजेस बन रहे हैं, एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है और एक रेल ब्रिज है, हैवी हैवी रेल।
अच्छा।
और आल्सो मेज़नीन कंस्ट्रक्शन और दो तीन छोटे छोटे ब्रिजेस आसपास एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स।
तो आपका काम क्या है, आप क्या करती हैं इसमें, आपकी क्या जिम्मेदारी है?
मैं यहाँ पे आई थी दो ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन की इंजीनियरिंग करने। तो ये ब्रिज है सिल्वर स्प्रिंग मेट्रो लाइट रेल ट्रांजिट ब्रिज एंड देन द कैपिटल ट्रेल ट्रसेट ब्रिज। तो ये दोनों ब्रिजेस की काम मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ। तो मोस्टली ये काम होता है कि बाहर फील्ड में जो काम जो इंजीनियरिंग में देख करनी है डिजाइनर करते हैं, मैं देखती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि सारी चीजें जो डिजाइन से करना है वो वैसे ही हम लोग एक्सिक्यूट कर रहे हैं। तो ये मेरी जॉब है। तो कभी कभार मैं फील्ड पे होती हूँ, मोस्टली फील्ड पे होना होता है क्योंकि देखना होता है कि कैसे कंस्ट्रक्शन जा रही है।
तो कितने वर्कर्स हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं या जिनको आप लोग देख रही हैं?
तो मेरी स्ट्रक्चरल टीम है और मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ अपने सुपरिंटेंडेंट के साथ और उनके पास, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन रिले करती हूँ कि कैसे बनाना है, कैसे बिल्ड करना है, कौन सी टॉलरेंसेज है, स्पेसिफिकेशन। एंड ये सुपरिंटेंडेंट के साथ मैं वर्क करती हूँ एंड हम लोग कंस्ट्रक्शन मेथड एक एक्सिक्यूट करते हैं कि हम लोग ऐसे बनाएंगे ये ब्रिज, ब्रिज डिफाइन बाय डिजाइन। और हमारी हमारी जॉब है इक्विपमेंट स्केड्यूल एंड कंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूशन।
तो ये कब तक ये काम जारी रहेगा और कितना जब ये बन जाएगा तो फिर क्या इसका इस्तेमाल होगा?
तो ये अभी जो है ना 2 साल की जॉब है, ये काफी मुश्किल जॉब है क्योंकि हमारे क्लाइंट WMATA एंड MTA एंड पब्लिक सिल्वर स्प्रिंग पब्लिक हैज बीन बहुत बड़ी मुश्किल मुश्किल क्लाइंट है. बहुत सारे उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो ये प्रोजेक्ट काफी स्लो हुआ है, बहुत सारे डिलेज हैं. तो अभी तो 2 साल का टाइम है लेकिन डिलेज भी है हमारे पास. तो वी आर वर्किंग थ्रू ऑल ऑफ दिस चैलेंजेस, इन सारी चैलेंजेस.
तो अरिबा ये तो कैसे आप फील्ड में जब जाती हैं तो सोशल डिस्टेंस वगैरह का तो आप लोग फिर केयर कर रहे होंगे ना?
आजकल सोशल डिस्टेंस नहीं जरूरी है, बहुत बहुत सोशल डिस्टेंस हमारी प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है. तो बिकॉज ऑफ COVID-19 हम लोग को जो करना जरूरी है, मास्क, वो पहले तो कंस्ट्रक्शन में जब भी बाहर जा रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर पहनना जरूरी होता है. और वो हम लोग खिलाते हैं PPE, तो वो है हमारी हैट्स एंड हमारे हार्ड हैट, ग्लव्स, ग्लासेस एंड बूट्स एंड जीन्स, जो सारी फुल क्लोथिंग. एंड देन जो है ना हमारी वेस्ट, रिफ्लेक्टिव वेस्ट. अब आजकल हम लोग को और मेजर्स लेने पड़ रहे हैं और वो मास्क है और काफी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी प्रैक्टिस करनी है. अब जो क्रूज होती है, जैसे एक क्रू में 5-6 लोग हो तो वो तो साथ काम करते हैं, वो तो सोशल डिस्टेंसिंग तक ज्यादा नहीं है क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं. लेकिन मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स एंड स्टाफ एंड सेफ्टी एंड ऑल सारे लोग जो आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना है सोशल डिस्टेंस.
तो वो खतरे में डाले हुए जो लेबर है उस बेचारे का कोई ख्याल नहीं है
जी. अब अनफॉर्चुनेटली खतरा तो है, मगर वो अब उनकी जॉब भी है. जैसे हमारे नर्सेज हैं, सब लोग हैं, वो भी उनका जो खतरा है वैसे ही खतरा हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे है.
तो फिर भी वो मास्क वगैरह तो पहना रहे हैं ना आप उनको काम करने के दौरान?
जी जी जरूर जरूर, बगैर मास्क के तो काम नहीं हो रहा है.
अच्छा ठीक है,
इट्स अ रिक्वायरमेंट. और आजकल हमारी कंपनी ने ऐसा कर दिया कि जिसको ऑफिस में होना नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियर्स एंड स्टाफ, तो उनको जरूरी नहीं है आना, घर से काम करें लेकिन प्रोडक्टिव होना है.
लेकिन आपकी जॉब की नई तैसी कि आपको फील्ड में भी जाना पड़ता है?
जी मुझे जो है ना आजकल मैं रोज जा रही हूँ, इतना ज्यादा नहीं लेकिन जैसे जैसे 1-2 घंटा चली गई देखने के लिए कि हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कर रहे हैं.
तो और इसके अलावा फिर बाकी वक्त घर में रहती हैं तो खाने पकाने का क्या फिर सिस्टम होता है आपका, कैसे रहती हैं?
तो मैं काफी इजी हूँ, मुझे कोई ऐसे खाना पकाने का कोई खास शौक नहीं है. लेकिन जब मैं पकाती हूँ मैं अपना लाइक एक दिन बना लेती हूँ, जो मैंने जैसे पिज्जा बनाया है कल, मैंने अपने पिज्जा दो बना दी, काफी इनफ है कि 3-4 दफा मैं बना सकती हूँ, है ना. और फिर ये 15-20 मिनट में ये आराम से हो गया. बस सारे इंग्रेडिएंट्स जब दो है तो फिर इंग्रेडिएंट्स डाल के जल्दी से हो गया. तो मोस्टली जो टाइम लगता है वो ग्रोसरी में लगता है, लेकिन जब मैं खाने बनाती हूँ जल्दी 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 वाले बनाती हूँ, सैलेड, पिज्जा, स्मूदी. और कभी कभार देसी भी बना लेती हूँ, जैसे उस दिन मैंने मटर पनीर बनाई थी.
मटर पनीर भी बना लिया? हाँ. तो ग्रोसरी डिलीवरी करवा रही हैं कि खुद लेने जा रही हैं?
नहीं मैं जो ना खुद ही लेने जाती हूँ, क्योंकि मैं अपना मास्क यहाँ पे सामने, मैं DC में रहती हूँ तो यहाँ पे काफी दुकान है वॉकिंग डिस्टेंस, आराम से हो जाता है ये सारा काम. कोई ऐसा खास टाइम नहीं है.
तो घर वाले फिर याद आते हैं जब? लेकिन आपको आदत पड़ चुकी है?
नहीं ये ना ये टाइम काफी मुश्किल है आजकल, अगर जब अकेले रह रहे होते हैं तो घर वाले याद आते हैं, है ना. बाहर जाना कुछ नहीं, जैसे वहाँ मेरे अभी मेरे घर पे अम्मी है, मेरी बहन है, मेरे अबू है, तो वो सब लोग यू नो रमजान में स्पेशली एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है, यू नो फैमिली है, तो वो मिल जाता है घर पे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बुरा नहीं है, आराम से ये हो रहा है, मेरा टाइम जल्दी 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 यूज हो जाता है, सबका टाइम लाइक इज ऑलवेज गोइंग टू फास्ट. ये तो है कि याद तो खराब आते हैं स्पेशली ड्यूरिंग होम.
तो अरिबा पाकिस्तानी लड़कियां मैंने बहुत कम देखी जो सिविल इंजीनियरिंग के शोबे में हो, तो आप बताइए कि क्या वाकई मेरा मुशाहिदा दुरुस्त है कि ये कम है होती हैं सिविल इंजीनियरिंग के शोबे में पाकिस्तानी खवातीन यहाँ अमरीका में?
नहीं
जरूर बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. एक्चुअली नॉट ओनली पाकिस्तानी लड़कियां, लड़कियां इन जनरल कम है. ये वाला प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली जो मेरा सेक्शन है उसमें ज्यादा लड़कियां नहीं है. तो मैं हूँ एक, मैं और मेरे साथ दो लड़कियां हैं इंजीनियर, ठीक है. एक्चुअली मैं और मेरी एक इंजीनियर दोस्त है और एक एचआर है, तो वो मोर बिजनेस साइड. लेकिन लड़कियां कम है मेरी टीम में.
क्यों कंस्ट्रक्शन के शोबे को आपने अपने लिए क्यों चुना?
ये मैं, मेरा इरादा नहीं था ग्रेजुएशन के वक्त कि मैं कंस्ट्रक्शन में जाऊंगी. मैं समझी थी कि मैं पहले, मैंने जब स्कूल खत्म कर लिया था, मैं डिजाइन में जाने वाली थी, स्ट्रक्चरल डिजाइन. लेकिन जैसे मुझे जॉब मिली वो जो ना कंस्ट्रक्शन, पहले मैं फ्रांस में थोड़ा सा काम किया, 6 महीने मैं गई थी फ्रांस में एंड मैंने वहां पर इंटर्नशिप की. ठीक है, वहां पर इंटर्नशिप ऑन रिसर्च ऑन कॉन्क्रीट एंड सस्टेनेबिलिटी. और उसके बाद जब मैं वापस आई थी, मेरे पास ऑलरेडी जॉब थी कंस्ट्रक्शन में, उन्होंने मुझे ऑफर दे दी थी. तो मैंने ले लिया था. लेकिन मैं उस वक्त से कोई फील्ड वर्क नहीं था, इट वाज मोर प्रपोजल्स एंड अ लिटिल बिट डिजाइन. मगर ये जो है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर रहना है तो जरूरी है, इफ यू वॉन्ट टू मूव टू मैनेजमेंट, कि आप सारे एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड करें. तो फील्ड इंजीनियरिंग और ये ब्रिज कैसे बनता है और बीइंग आउटसाइड जहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग बहुत इम्पोर्टेंट है.
तो क्योंकि अब आपने मैनेजमेंट में अब जाने वाली हैं, तो आपने कहा कि मुझे तो ये सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो आपने कर लिया. तो इससे पहले भी आपने कहीं और भी जॉब की कंस्ट्रक्शन के शोबे में, कि यही वाशिंगटन डीसी में ही आप आई हैं?
नहीं, मैं जब ग्रेजुएट हुई थी तो फिर मैं, मेरा फ्रेंड्स के बाद मैंने अपनी कंपनी जो ज्वाइन की थी वो कंस्ट्रक्शन में थी. उस वक्त से एक साल तक या दो साल, एक साल मैं अपने ऑफिस का काम किया और ऑफिस साइड मैनेजमेंट साइड अंडरस्टैंड मतलब सीखा. उसके बाद मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो वर्जीनिया में था, सिल्वर लाइन मेट्रो रेल जॉब. तो वहां पे मैं स्टेशन का काम कर रही थी, मोर ऑफिस, कोई ऐसा हैवी स्ट्रक्चरल फील्ड वर्क नहीं था. इट वॉज इंजीनियरिंग लेकिन मोर ऑफिस से, कि स्टेशन कैसे बनेगा और एक्सिक्यूट करे अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स, कौन कौन क्या काम कर रहे हैं. तो वो मेरी जॉब थी ऑन द सिल्वर लाइन, ठीक है, फॉर ऑल द स्टेशन. ये मैंने एक साल काम किया यहाँ पे. उसके बाद मैं वापस सियाटल चली गई. वहां पे एक फ्लोटिंग ब्रिज पे लाइट रेल बन रही है, तो इट्स कॉल्ड द I-90 फ्लोटिंग ब्रिज प्रोजेक्ट, ईस्ट लिंक एक्सटेंशन. तो उस जॉब पे मैंने जो काम किया था वो मैंने फील्ड इंजीनियरिंग की ऑन द ब्रिज. हम लोग ब्रिज के अंदर जो है ना केबल पोस्ट टेंशनिंग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो मेरी जॉब थी. उसपे मैंने काम किया फॉर अबाउट अ ईयर. और फिर मैं, वो एक ईयर से कम था, फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ.
अच्छा,
और इस वाली रेल पे जॉब पे.
तो कैसा लगता है अरिबा, जब एक पुल जिस पर आपने इतना अरसा काम किया है, जब वो तैयार हो जाता है, तो फिर क्या क्या करती हैं आप उस पर, भागती हैं?
I think वो बहुत एक रीजन है कि why मैं अभी तक हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा काम है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, स्पेशली एज अ लड़की. लड़कियों के लिए जो ना लाइक लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं है कि मैं फील्ड में रहूंगी, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, वो द फैमिली लाइफस्टाइल, यू नो. तो लेकिन इट्स गुड एक्सपीरियंस, अभी एक्सपीरियंस अच्छा है. लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलता है आफ्टर अपना जो काम कर लेते हैं, और जैसे मैंने अभी अपना स्ट्रक्चर देखा है, पहले जो ना कुछ नहीं है, पहले खाली जमीन है, फिर कॉलम्स बने, फिर गर्डर्स गए, फिर डेक गया है, और फिर जब अपना अपनी ब्रिज देखते हैं आप, तो वो बहुत सेटिस्फेक्शन एंड जस्ट सर्विस टू द कम्युनिटी, राइट? सो इट्स अ रियली गुड प्रोफेशन. लेकिन अभी मेरी जॉब क्या है कि लर्न एज मच एज आई कैन, जितना सीख सकती हूँ सीखूँ, और फिर जो ना अपनी सारी एक्सपीरियंसेस लेके जाऊँ, यू नो, मैनेजमेंट में अच्छा मैनेजर बनूँ, अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क, अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड द वर्क. लेकिन लॉन्ग टर्म गोल, करियर इम्पोर्टेंट है, वो तो है, लेकिन बिकॉज ऑफ फैमिली एंड ऑल द अदर माई अदर प्रायोरिटीज, कंस्ट्रक्शन इज नॉट समथिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल.
यही पाकिस्तानी और जनूबी एशिया की लड़कियों का एक खास अंदाज होता है सोच का, कि जॉब भी साथ रखनी है, लेकिन ऐसी जॉब कि जिसमें घर बिल्कुल नज़रअंदाज, ऐसा ना हो कि घर चले ही ना और हम फील्ड में ही रहें. तो यही आपकी सोच है, यही आपकी सोच है. तो बेहद शुक्रिया अरिबा उसुमरो, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला.
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. کرونا کی اس وبا کے دوران اور لاک ڈاؤن کے دوران پاکستان کی بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اپنے جاب کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اگرچہ گھروں میں بھی کام کر رہی ہیں لیکن انہیں اپنے فیلڈ میں بھی کبھی کبھی جانا پڑتا ہے, خاص طور پر جو کنسٹرکشن کے شعبے میں خواتین کام کر رہی ہیں. اس شعبے میں ویسے تو خواتین کم کم دکھائی دیتی ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو سیاٹل واشنگٹن اسٹیٹ میں موجود ہیں اور وہ کنسٹرکشن انجینئر ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ شعبہ کیوں چنا. السلام علیکم سمیع رضوی. میں ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج آپ کنسٹرکشن کے شعبے میں ہیں تو کس کیا کام کرتی ہیں آپ؟
جی میں سول انجینئر ہوں اور میں سٹرکچرل کی کام کرتی ہوں. آج کل ہم ڈاؤن ٹاؤن سیل میں بلڈنگ کو اور ڈاؤن ٹاؤن میں ہمارے ایک دو بلڈنگ ہیں جو ابھی بن رہے ہیں. ہماری کمپنی بھوئی ویسٹ کوسٹ میں ہے تو ہم کیلیفورنیا میں بھی ایک دو پروجیکٹس ہیں ہمارے. تو جو ابھی سیارو میں ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم آفس بلڈنگ بناتے ہیں جو 10-15 اسٹوری کے ہوتے ہیں, اینڈ جو کیلیفورنیا میں ہے وہ آج کل ہم اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں.
اچھا, اور وہ جو سیاٹل میں ہے وہ کتنے فلور کی بلڈنگ ہے؟
ابھی میرا جو بلڈنگ ہے وہ 10 فلور کا ہے.
اوہ, 10 فلور کا بلڈنگ بن رہی ہے. تو اس میں آپ کا کیا کام ہوتا ہے, آپ کیا کرتی ہیں اس میں؟
ہم ایک دو دفعہ چلے جاتے ہیں فیلڈ میں, پر آج کل جب ہم کوارنٹائن میں ہم ابھی نہیں جا رہے.
فیلڈ میں جا کر کیا کرتے ہیں آپ؟
فیلڈ میں دیکھتے ہیں اگر جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے انہوں نے اس طرح کی بل کیا یا نہیں.
لیکن آپ اس کی ڈیزائننگ میں آپ کا کوئی رول نہیں ہوتا؟
نہیں, ڈیزائن میں رول ہے پر جو بلڈنگ میں رول نہیں ہوتا.
کنسٹرکشن کوئی اور کرتا ہے لیکن آپ اس کی ڈیزائننگ کرتی ہیں, سٹرکچرل انجینئر ہے نا, اس کا سٹرکچر بناتی ہیں آپ, اس کا ڈیزائن کرتی ہیں. تو کن چیزوں کا خیال رکھ رہی ہیں جو کیلیفورنیا کی جو بنا رہی ہیں آپ بلڈنگ, اپارٹمنٹس بن رہے ہیں وہاں پر؟
وہاں پر میجوری کی جو چیزیں جو اپارٹمنٹ بنتے ہیں جو بھی بلڈنگ بنتا ہے it has to withstand a earthquake.
اچھا ٹھیک, خاص طور پر خیال رکھتے ہیں. تو کیا وہاں ارتھ کو ایک آتے ہیں کیلیفورنیا میں جس جگہ آپ بلڈنگ یا اپارٹمنٹس بنا رہی ہیں؟
جی وہ کیلیفورنیا میں ایک دو فالس ہوتے ہیں, میجورٹی آف مائی بلڈنگ جو نارتھ کیلیفورنیا میں ہوتے ہیں وہ فالس کے پاس ہی ہوتے ہیں. ایکچولی پورا ویسٹ کوسٹ ارتھ کویک انجینئرنگ کی ڈیزائن ہوتا ہے, تو اگر ارتھ کویک ہو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے ویسٹ کوسٹ پر, اس کے لیے وہ ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ جب ہو جائے تو وہ بلڈنگ نہیں گر پاتا.
لیکن کبھی ہوئی, کبھی ہوا وہاں پر ارتھ کویک؟
کیلیفورنیا میں چھوٹے چھوٹے ارتھ کویک ہوتے رہتے ہیں, اس کے لیے وہ ہمارے ڈیزائن پر ارتھ کویک ہی بنتے ہیں. تو لاسٹ ارتھ کویک کیلیفورنیا میں مجھے ابھی یاد نہیں ہے, پر سیاٹل میں جو پچھلا ارتھ کویک ہوا تھا, جو پہلا سا ارتھ کویک ہوا تھا وہ 2001 میں ہوا تھا, اینڈ یہاں کے ایک دو بلڈنگ وہ بہت افیکٹ ہوئی تھیں. تو ہم اس کی وجہ سے ہم بلڈ کرتے ہیں,
اچھا
یہ ڈیزائن کرتے ہیں,
یہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ ارتھ کویکس کے سے وہ اسٹرانگر ہوں تاکہ ارتھ کویک کو برداشت کر لیں. تو آپ نے ویسے یہ شعبہ کیوں چنا, کیوں یہ اس سول انجینئر کیوں بنی؟ لڑکیاں تو بہت کم آتی ہیں اس شعبے میں.
مجھے پسند ہے کہ جب آپ بل کرتے ہیں تو ایک دو سال کے بعد وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, رائٹ؟
تو خوشی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ ہم. تو اب تک کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو جاب کرتے ہوئے؟
اب یہ 4 سال ہونے والے ہیں.
तो 4 साल में कितना आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, कितनी बिल्डिंग्स आपको ने आप आपने डिजाइन की हैं और कितनी को बनते हुए देखा और बन गई फिर वो बताइए।
अभी याद भी नहीं है। हमारा जो काम जो मैं सारे कैलिफोर्निया के जो प्रोजेक्ट है उसके अपार्टमेंट जैसे बिल्डिंग है तो मैंने 4-5-6 तो देखी है कैलिफोर्निया में। एंड जो यहाँ बिल्डिंग है मैंने शायद एक दो बिल्डिंग देखी है। एंड हमने एक दो आर्ट की चीजें भी उसकी जो स्टैम्प होते हैं वो भी डिजाइन की है तो वो भी हमने देखा हुआ है।
आर्ट के चीजों के क्या डिजाइन, वो मुझे समझ में नहीं आई बात।
तो अगर आप बिल्डिंग के सामने अगर आपको कुछ आर्ट की चीज रखनी है तो यहाँ पर सेल में हम रैंडमली दो बिल्डिंग के सामने आर्ट की चीज रख देते हैं तो हम वो डिजाइन करते हैं, उसकी कनेक्शन डिजाइन करते हैं तो वी मेक श्योर के वो गिर ना पाए।
अच्छा, कोई आर्ट की चीज भी किसी बिल्डिंग के सामने रखनी पड़ती है खूबसूरती के लिए, लेकिन वो ऐसी बने कि वो गिर ना पड़े। जैसे कि जैसे म्यूजियम के सामने होती है वो चीज कह रही हैं आप, है ना? तो आप जब कोई प्रोजेक्ट करती हैं तो आप अकेले करती हैं, कितने लोग होते हैं जब आपकी कोई बिल्डिंग बनती है या डिजाइनिंग करती हैं आप तो?
अगर अपार्टमेंट जैसे बिल्डिंग हो या 10 स्टोरी से कम बिल्डिंग हो फिर यूजली हमारे टीम में 2-3 लोग होते हैं। अगर
अच्छा,
बड़ा सा बिल्डिंग बना रही है जो पता नहीं 15 से ज्यादा फ्लोर हो तो उसमें उसमें हमारे टीम 6 लोग हो सकते हैं, 8 लोग भी हो सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स ऑन लाइक कितना काम है, कितना बड़ा बिल्डिंग हो रहा है एंड ऑल्सो कहाँ है। कैलिफोर्निया में जो एक दो बिल्डिंग है जिस पर मैंने काम नहीं किया है तो हमारे जो ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो उस टीम में तो 8 या 10 लोग भी हो सकते हैं तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द साइज एंड हाउ बिग इज इट।
तो अब बताइए कि लॉकडाउन में अब आप कब तक घर के अंदर रहेंगी और कब कब बाहर जाएंगी?
आजकल यहाँ पर May 31st तक हमारे लॉकडाउन है, उसके बाद वो देखेंगे ट्रेंड कैसे जा रहा है एंड अगर हमारे यहाँ इतने केसेस नहीं हैं May 31st तक फिर शायद वो ऑफिस खोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं जून के जुलाई से पहले जाऊंगी पर यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ कि उन्होंने लैपटॉप दी हुई है और कंप्यूटर स्क्रीन भी दी हुई है तो हमारे पास घर पर सब कुछ हो चुका है एंड 1 महीने से ज्यादा हो चुका है सो इट्स नॉट टू बैड, एडजस्टमेंट हो चुका है।
तो ये इम्कान है। और जो आपके जो बाकी जो कंस्ट्रक्शन के जो काम करने वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां पर कैलिफोर्निया में?
जी दोनों यहाँ पर सैलर में और कैलिफोर्निया में आजकल बन रहे हैं। एक दो प्रोजेक्ट को उन्होंने रोक दिया था क्योंकि फॉर सेफ्टी पर उन्होंने पिछले हफ्ते सारे प्रोजेक्ट खोल दिए हैं एंड आपको लाइक मास्क पहनना पड़ता है, ग्लव्स पहनना पड़ता है एंड सोशल डिस्टेंसिंग भी करना पड़ता है तो यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल होती है सोशल डिस्टेंस भी करने के लिए स्पेशली जब आप बिल्ड करते हैं पर हो रहा है बिल्डिंग पर जा रहे हैं काम तो बहुत है आजकल
काम हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता शुरू भी हो गया है और थोड़े दिनों के बाद हो सकता है आपको भी फील्ड में जाना पड़े। हाँ
देखिए।
अच्छा समिया, आप बताइए कि आप क्या यहीं अमेरिका में पैदा हुई हैं, कभी पाकिस्तान गई?
बहुत साल हो चुके हैं।
बहुत साल हो चुके हैं। तो उर्दू घर में बोली जाती है कि नहीं बोली जाती?
बोल जाती है।
और पाकिस्तानी कल्चर भी होता है आपके घर में?
बहुत
अम्मी अम्मी ये पाकिस्तानी ड्रेसेस पहनती हैं?
जी हम सब पहनते हैं
सब पाकिस्तानी ड्रेस?
घर में शरारती, हाँ घर घर में तो शरारती, तो
और कितने बहन भाई हैं आप?
एक बड़ी बहन है और छोटे भाई है।
छोटे भाई हैं। तो अब ये आपका प्रोफेशन बन चुका, अब इसको छोड़ना तो नहीं है आपने?
नहीं, इंशाल्लाह तो अभी तो नहीं।
अच्छा, तो अगर अगर शोभा बदल भी सकती है, सिविल इंजीनियर आप हैं तो किसी और इंजीनियरिंग के शोभे में जा सकती है?
अगर दिल चाहे तो कुछ भी हो सकता है कदर से।
सही बात है। तो हम अपने सुनने वालों को बताएं कि समिया रिजवी यहीं क्योंकि पैदा हुई हैं, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी, उर्दू में ही पहुंचा दी है, और हमें यकीन है कि आपको उनकी बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी, और अगर कहीं कहीं नहीं आई, हाँ बहुत अच्छी इन्होंने कोशिश की है, और हम इनको फिर बुलाएंगे और इससे भी अच्छी उर्दू बोल कर ये आपको बताएंगे कि इन्होंने लॉकडाउन के बाद क्या। बहुत शुक्रिया समिया रिजवी आपका, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।